آئیے پاکلام کی طرف بڑھیں گے. چند ایک باتیں, آپ کا بہت سا وقت نہیں لوں گا, چند ایک باتیں آپ کے درمیان میں رکھنا چاہتا ہوں. آج کا ہمارا مضمون ہے, یہ کسی سبب سے ہوا, یہ کسی سبب سے ہوا ہے. It happened for a reason. یہ کسی سبب سے ہوا ہے. آپ کی اور میری زندگی کی حدود کو خدا نے مقرر کر رکھا ہے. اگر آپ ایماندار ہیں تو آپ کو اس بات پر اعتقاد رکھنا پڑے گا کہ میری اور آپ کی زندگی کی حدود میرے اور آپ کے خدا نے مقرر کر رکھی ہیں, اور وہ اقدامات جو میں اپنی زندگی کے لیے اور اپنے ارد گرد لوگوں کے لیے کرتا ہوں, وہ تمام کے تمام اقدامات جو ہیں ان میں میرے خدا کی قدرت موجود ہوتی ہے. اب وہ سٹیپس جو ہیں, آپ جنہیں آپ یہ سمجھتے ہوں کہ شاید یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں شاید یہ میری اختراع ہے یا میرا منصوبہ ہے یا میرا ایجنڈا ہے یا میں نے اسے جو ہے وہ چاک آؤٹ کیا ہے, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو کچھ آپ اپنی لائف میں بطور مسیحی کر رہے ہیں یا آپ کی لائف میں جو کچھ ہو رہا ہے بطور خدا کے فرزند, یہ خدا کی طرف سے ڈیزائنڈ کیا گیا ہے. It's designed from above. آپ اور میں بنیادی طور پر اس کے بچے ہیں. آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ آپ نے یہ کیا, but it's designed by God. اور there is a reason. اس کا کچھ سبب ہے. پالوس رسول نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے اور ہم ہمیشہ اسے دہراتے ہیں کہ تھوڑی سی چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے, آیت کو درست کیجئے, کتنی چیزیں, سب چیزیں, کتنی چیزیں. اب وہ سب چیزیں کون سی ہیں؟ Everything, inclusively everything. وہ آپ کی لائف کی کمیاں, آپ کی لائف کے گھاٹے, آپ کی لائف کی کامیابیاں, آپ کی لائف کی سکسیسز, آپ کی لائف کے فروٹس, everything, سب چیزیں مل کر الگ الگ نہیں. یہ نہیں لکھا ہوا کہ جو ہے وہ سیپریٹلی دے ورک آن دیئر اون. ایوری تھنگ انکلوسیولی, کولیکٹیولی اینڈ ٹوگیدر, مل کے. ایک کمی دوسری کمی کے ساتھ مل کے, ایک کمی دوسری کامیابی اور پروفٹ کے ساتھ مل کے, یہ ساری چیزیں مل کے آپ سے, آپ کی لائف میں جو کچھ ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ آپ سے محبت کرتا ہے, اس لیے سب چیزیں مل کر یسوع مسیح سے محبت کرنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں. اور یاد رکھیے, یہ بھلائی صرف اسی کے لیے ہے جو اس سے محبت کرتا ہے, جو اس کی محبت میں گرفتار ہے. If you are in love with him, بلیو کریں آپ کی لائف کی کمیاں اور گھاٹے بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہیں. آمین. اگر آپ محبت کرتے ہیں اس سے تو آپ کی وہ محبت آپ کی کمیوں, گھاٹوں کو, بیماریوں کو, نچاکیوں کو, چلاکیوں کو, سازشوں کو, ہر چیز کو جو ہے وہ نیکی میں بدل دے گی, بشرط یہ کہ آپ اس کی محبت میں گرفتار ہوں. اور اگر میری محبت میں کہیں نہ کہیں کمزوری موجود ہے اور میری محبت جو ہے وہ ڈرائنس کا شکار ہے, تو پھر ممکن ہے کہ سب چیزیں آپ کے لیے بھلائی پیدا نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ محبت کرنے والوں کے لیے بھلائی پیدا ہوگی. اس لیے آپ یاد رکھیں کہ خدا جن سے محبت کرتا ہے نا, ان کی لائف کے سٹیپس کو آرڈر کرتا ہے. جینس, خدا جس سے محبت کرتا ہے اس کی لائف کے سٹیپس کو وہ آرڈر کرتا ہے کہ بیٹا اس طرح سے چلنا ہے, اس طرف چلنا ہے, اس طرف جانا ہے, اس طرف جانا ہے, وہاں جانا ہے, ایسا جانا. آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ جا رہے ہیں, بٹ somebody sending you, کوئی آپ کو بھیج رہا ہے. آئیے میرے ساتھ دیکھیں, جلدی سے کھولیے گا استشنا کی کتاب, اس کا 8 باب, اور دیکھیے کس خوبصورتی سے خدا نے اسی میسج کو میرے اور آپ کے درمیان میں رکھا ہے, کہ کس طرح سے میری اور آپ کی لائف کے ایونٹس جو ہیں, وہ خدا کی طرف سے مرتب اور ترتیب دیے جاتے ہیں. استثنا کی کتاب اس کا 8 باب, اگر کوئی نکال لیتا ہے, اگر کوئی نکال لیتا تو بلند آواز سے پڑھیے گا جی, پہلی آیت سے لے کے اس کی 6 آیت تک پڑھیے گا جی. تو اس سارے طریق کو یاد رکھنا جس پر ان 40 میں خداوند تیرے خدا نے تجھ کو اس بیابان میں چلایا. کس نے چلایا؟ خدا نے اس بیابان میں چلایا تاکہ جی تاکہ وہ تجھ کو, بلند آواز سے جماعت بولیے, تاکہ وہ تجھ کو کس کو عاجز کرے؟ جس سے پیار کر رہا ہے, جس سے محبت کر رہا ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ تجھے میں نے بیابان میں چلایا, یعنی بیابان میں بھیجنے والا کون ہے؟ خدا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی لائف کے ڈیزرٹس جو ہیں, بیابان جو ہیں, یہ ابلیس کی طرف سے ہیں؟ نو, آپ کی لائف کے صحرا, بیابان آپ کے خدا کی طرف سے ہیں. If you are in love with him and he is in love with you. جی آگے پڑھیے گا. تاکہ وہ تجھ کو عاجز کر کے پھر آزمائے. جی, اور تیرے دل کے اندر کیا کچھ چلتا ہے وہ اسے دریافت کرے, کہ تو اس کے حکموں کو مانے گا یا نہیں. خدا جانتا ہے, سنیے گا, خدا جانتا ہے کہ یہ میرے حکم کو مانے گا یا نہیں, بٹ یٹ وہ اپنے بچے کو اپنی اس کی آزاد مرضی پر پھر بھی چھوڑ رہا ہے کہ وہ اس بات کو جانے کہ میں تجھے پریشرائز نہیں کروں گا. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تو ویسے مجھ سے محبت کرتا ہے جیسے میں تجھ سے کر رہا ہوں. میں تیرے لیے جو کچھ کر رہا ہوں کیا تو اسی طرح رسپونڈ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ خدا کہتا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں جس طرح سے میں تجھے بلیس کر رہا ہوں, جس طرح سے میں تجھے سرفراز کر رہا ہوں, جس طرح سے میں تیری زندگی میں مداخلت کر رہا ہوں, انوالو ہوں, کیا تو میری زندگی میں انوالو ہے؟ جی پڑھیے گا. اور اس نے تجھ کو عاجز کیا اور تجھ کو بھوکا بھی ہونے دیا. آپ کی بھوک, آپ کے فاقے, آپ کا ننگ, آپ کا کال لائف کا قحط, فیمن آپ کے خدا کی طرف سے ہے. اس نے تجھ کو, یعنی میں نے تجھ کو بھوکا ہونے دیا. I wanted you to stay hungry. بعض اوقات یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی باپ اپنے بچوں کو بھوکا رہنے دے؟ کسی وجہ سے, کسی سبب سے. اگر میں بچے کو فاقہ کرواؤں گا تو اس کا کوئی سبب ہوگا, اس کی کوئی ریزن ہوگی. اور جب خدا آپ کو فاقے کروائے تو سمجھ لیجئے آپ کی بہتری ہے. کسی نہ کسی معاملہ میں خدا آپ کو کہیں لے کر جانا چاہ رہا ہے, خدا آپ کو کوئی راہ دکھا رہا ہے, خدا آپ کے لیے ایک بہت بڑا دروازہ کھولنے والا ہے. اور یہ ان کے لیے یہی تھا کہ میں نے تجھے بھوکا کیا. اے میرے بیٹے, اے میری بیٹی, ہاں میں تکلیف میں, میں دکھ میں ہوں کہ تمہیں فاقہ میں سے گزاروں, مگر میں چاہتا ہوں کہ تم فاقہ میں سے گزرے, تو تکلیف میں سے گزرے اور اس سارے کے سارے کام کا تجربہ کرے. اس کی وجہ ہے, دوبارہ پڑھیے گا جی. جی آمین, پریز گاڈ. آئیے بولے ہاللویا, ہاللویا. میں نے تجھے اس لیے بھوکا رکھا تاکہ میں تجھے آسمانی من کا تجربہ دوں. بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ یہ کمزوری آئی ہے, یہ ناکامی آئی ہے, یہ فیلئر ہے, اور شاید یہ میرے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے, یہ تو میرے لیے ایک بہت بڑا, میرے ایمان پر بڑی ضربے کاری ہے. یاد رکھیے, خدا آپ کو اگر دکھ دے رہے نا تو وہ آپ کو بہت بڑا سکھ دینا چاہ رہا ہے. وہ سکھ جس کا دنیا نے تجربہ نہیں کیا, इस मन का तजर्बा, अगर आपको उसने भूखा रखा है तो वो आपको आसमानी मन का तजर्बा देना चाह रहा था। अगर इसराइल मैं तुम्हें भूखा रख रहा हूं, अगर मैं तुझे बियाबान में से लेकर जा रहा हूं, तो मैं तुझे चाहता हूं कि तू किनान की तरफ जाए, इस बियाबान में से गुजर ताकि किनान की तरफ जाए, इस भूख में से गुजर ताकि आसमान का मन तू खाए। खुदा मेरे और आपके लिए बड़े प्लान्स रखता है। उन्हें आप अपनी लाइफ के लिए देखें खुली आंखों से। वो चीजें जो आंखों ने ना देखी, कानों ने ना सुनी, और जिनका ख्याल कभी इंसान के दिल में नहीं आया, वो कितनी चीजें, सब चीजें खुदा ने अपने मोहब्बत करने वालों के लिए तैयार की हैं। किन के लिए तैयार की हैं? बात फिर मोहब्बत की है, जिससे उसे इश्क है, जिससे उसे मोहब्बत है, उसे तो वो सब कुछ देता चला जाता है, देता चला जाता है, देता चला जाता है। लोग कहते हैं कि यार अंतकार बैठे सब कुछ लब्बन दे, है ना? इट्स माइंड ब्लोइंग, इट्स माइंड ब्लोइंग व्हेन यू बिगिन टू गेट थिंग्स जस्ट सिटिंग एट योर होम डूइंग, पीपल फील लाइक यू आर डूइंग नथिंग एंड ही इज प्रोड्यूसिंग आउट ऑफ नथिंग एवरीथिंग। आपकी उस कमी और घाटों में भी वो सब कुछ पूरा कर रहा होता है। ये उसकी मोहब्बत है, उसकी मोहब्बत है कि आपकी गार में आप छिपे हुए हैं और वो कमों को भेज के आपको गोश्त खिला रहा है। आप कह रहे हैं कि यार ये तो फाकों से मर जाएगा यहां पे, एलिया यू गोना डाई हियर, व्हाई? बिकॉज ऑफ योर हंगर, बिकॉज ऑफ योर फियर एंड द स्केयरनेस विल टेक योर लाइफ। बट खुदा मोहब्बत करता था, खुदा उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार था। उसने आसमान से मन बरसाया बियाबान में लोगों के लिए, इलाइजा के लिए उसने कव्वों के हाथ गोश्त भेजना शुरू किया है। आपको वो लोग देंगे जो आपसे छीनने वाले हैं, जब खुदा मोहब्बत करता है। कव्वे का काम है गोश्त छीन के ले जाना, और जब वो आपके लिए लेके आ रहा हो कि मेरा लो नबी साबिर भाई ये ले लो, शारून भाई ये ले लो, कव्वा आपके लिए गोश्त लेकर आ रहा हो, तो इसका मतलब है मामला खुदा के हाथ में है कुछ। आमीन। मामला खुदा के हाथ में, और वो कुछ कर रहा है आपके लिए। जय मसीह की। तो वो कुछ कर रहा था और लिखे कि देख मैं चाहता था कि तुझे वो खिलाऊं जो कभी इंसान ने नहीं खाया। आमीन। कभी इंसान ने नहीं खाया, और तुझे ये सिखाऊं कि इंसान सिर्फ रोटी और पानी से जीता नहीं रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के, आमीन, खुदा के मुंह से जो निकलती है उससे जीता रहेगा। जी आगे पढ़िएगा। इन 40 बरसों में आप सोचिए ना तो तेरे केड़ा कैल्विन क्लाइन दा सूट सी जड़ा खराब ही नहीं हो रहा है ना? ये कौन सा ब्रांड है भाई? इट्स नॉट गेटिंग वर्स, ये खराब ही नहीं हो रहा है। ये यीशु मसीह, ये खुदा के हाथ की कारीगरी है, ये उसके हाथ की कारीगरी। लिखा कि तेरे तन का कोई सूट खराब ही नहीं हुआ। आप सोचें 40 साल तक उन्होंने कपड़े पहने रखे हैं, खराब ही नहीं हुए। और बट दिस इज व्हाट आई थिंक, क्योंकि वो उधर जूतियां नहीं थे बना रहे बियाबान में, वो तो सफर कर रहे थे। बच्चों ने जो बच्चा जो 10 साल था, उन्हें जो 10 साल की जूती पाई सी, वो वाद रहा सी, जूती भी वाद रही सी नाल ना। आप सोच सकते हैं इस बात को? इट्स गॉड, ये खुदा है जो कुदरत वाला है। उसने कहा कि नहीं, तू भाई अगर मेरे कद को बढ़ा सकता है तो मेरी जूती के साइज को क्यों नहीं बढ़ा सकता? बढ़ा सकता है ना। इट्स गॉड, ये खुदा है। वो छोटा सा पौधा है, का बीज बोते हैं, वो बढ़ाता बढ़ाता 100 फीट का दरख्त बना देगा, तो एक जूती का साइज क्यों नहीं बढ़ा सकता? आपके कपड़ों को मजबूत क्यों नहीं रख सकता? और लिखा है किताबे मुकद्दस में, ये देखें, देयर इज अ रीजन। हम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं कि हर बात ईमानदार की लाइफ में किसी सबब से होती है। आप इसको याद रखें, अगर आज आप बियाबान का सफर कर रहे हैं तो ये आपका इंतखाब नहीं है, ये आपके बाप का इंतखाब है। क्यों? क्योंकि वो आपको केनान की तरफ लेकर जाना चाह रहा है। आप सोच रहे थे कि श्रीलंका जी सब कुछ खत्म हो जाएगा, खुदा सोच रहा था कि मैं तो आपको कहीं और लेकर जा रहा हूं, है ना? आप सोच रहे हैं थाईलैंड में खत्म हो जाएगा, खुदा कहीं और लेकर जाना चाह रहा है। आप मलेशिया में खत्म हो जाएगा, नहीं, God has a different plan and the plan of betterment। खुदा का काम, खुदा का मंसूबा भलाई का मंसूबा है। आमीन जी, पढ़िएगा जी आगे। ना तो तेरे तन के कपड़े पुराने हुए। आप सोचें, हमें कपड़े नए लेने पड़ते हैं, मगर उन्होंने 40 बरस तक कपड़ा ही पुराना नहीं, खुदा ने उन्हें ऐसा धागा मजबूत खुदा ने बांधा होगा। उन धागों को किस कदर खुदा ने मजबूती अता फरमाई हो, फैब्रिक कैसा होगा। ऑब्वियसली जब वो मिस्र से निकले थे तो वो आम फैब्रिक था, मगर उस फैब्रिक को, उस कपड़े को खुदा ने किस कदर मजबूत कर दिया था। ना कपड़ा पुराना हुआ, ना कपड़ा फटा, ना कपड़ा जो है वो गला। भाई ये आपका खुदा है, एंड ही स्टिल सेम। देख मैं आज, कल, अब तक यकसा हूं। अगर कल कपड़ों की कमी नहीं होने दी थी तो आज भी नहीं होने देगा। आमेन। आज भी नहीं होने दूंगा, मैं अपने प्यारे को, अपने महबूब को किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। जय मसीह की। जी पढ़िए आगे जी। देखें रीजन क्या थी, खुदा तंबी, ही वांटेड टू वार्न हिज ओन सन्स। उसने अपने बच्चों को वार्न किया, तंबी किया, जिस तरह बच्चों को मैं तंबी करता हूं, खुदा भी बच्चों को तंबी करता है। जी आगे पढ़िएगा। जी आमेन, प्रेज गॉड। आइए बोले हालेलुया। थैंक यू सलीम, प्लीज बैठिएगा। फिर बोलेंगे हालेलुया। आपका बेआबानी सफर, आपके दुखों और तकलीफों का सफर, आपकी बीमारी का सफर खुदा के सामने है, और अगर आप उसके बेटे और बेटी हैं तो यह खुदा की तरफ से है। और फिर अगर वो खुदा की तरफ से है तो उसका कोई सबब है, और सबब क्या है, आइए चंद एक बातों का निचोड़ डालते हैं। सबसे पहली बात, खुदा मुझे और आपको आजिज बनाना चाहता है कि आपके पास वाफर मिकदार में सब कुछ हो तो भी आप आजिज हो। मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं? और ये खुदा ने खुद कहा कि मैं तुझे आजिजी सिखाना चाहता, आई वॉन्टेड टू मेक यू हम्बल। ऐसा ना हो कि ये बड़े बड़े एक्सपीरियंसेस, बड़े बड़े तजर्बे, बड़ा मालो मता, बड़े बड़े मौजजे जो मैंने तेरी लाइफ में किए हैं, ये तुम्हें जो है वो अब बड़ा बड़ा सोचने पर मजबूर कर दें, और तू अपने ख्यालों में घुमंडी होना शुरू हो जाए, फाखिर होना शुरू हो जाए। बट आई वॉन्ट यू टू स्टे हम्बल। मैं तुझे आज ही, अगर मैं तुझे कामयाबी दूं, अगर मैं तुझे जो अब सरफराज करूं, अगर मैं तेरी कमियों और घाटों को नफे में बदलता चला जाऊं, तो बेटा आजिज होना। That's the first lesson. खुदा ने इसी लेसन को बनी इसराइल को दिया कि मैं तुझे आजिजी का रास्ता दिखाना चाहता हूं। आपके पास लाखों करोड़ों, अगर आजिजी नहीं है तो वो लाखों और करोड़ों को दीमक लग जाना है। It cannot be eaten by your enemy. आपका दुश्मन उसे खा जाएगा। और उन लाखों करोड़ों अरबों का कोई मजा भी नहीं है अगर उसमें आजिजी नहीं है, अगर उसमें मोहब्बत नहीं है। तो खुदा मुझे और आपको यहां पर पहला सबक यह दे रहा है कि बेटा जो कुछ भी लाइफ में है ना, ये मेरी तरफ से है, और मैं चाहता हूं कि तू इस सारे अमल में, इस बेआबानी सफर में क्या कर, जो तजर्बे कर रहे ना, इससे आजिजी इख्तियार कर। सीख हाउ टू स्टे हम्बल। दूसरी बात, खुदा यह सिखाना चाहता है कि बेटा कुछ भी हो जाए, मुझ पर एतकाद करना ना छोड़ना, मुझ पर भरोसा करना ना छोड़ना। हां हो सकता है बाजुकात मैं अपनी अक्ल पर, अपनी जहानत पर, अपनी क्वालिफिकेशन पर, अपनी 28 साल खिदमत पर, सब पर बड़ा फख्र करता हूं, मगर खुदा चाहता है कि तू अगर 50 साल भी खिदमत की है ना, तो फिर भी तेरा फख्र मेरी जात पर होना चाहिए, तेरा एतकाद मेरी जात पर होना चाहिए कि मैं तुझे हर रोज सिखाता चला जाऊंगा। और ये खुदा सिखाता है आपके बेआबानी सफर में, खुदा आपको सिखा रहा है, और इस बेआबानी सफर में जहां आप कामयाबियां भी पा रहे हैं, खुदा ये सिखा रहा है कि मुझ पर फिर भी अपना तवक्कल रख। और आज चर्च, तवक्कल के मामला में हम बहुत पीछे रह गए हैं। हम इस दौर में, ईमान की इस दौर में, एतकाद की इस दौर में बहुत पीछे रह गए। ऐसा एतकाद तो मैंने इसराइल में भी नहीं देखा। खुदा मुझ में और आप में ऐसा एतकाद देखना चाहता है जो उस खातून का एतकाद था, जो उसने कहा तू जिस मेज से मालिक के मेज से गिरने वाले टुकड़ों को भी, तो कुत्ते भी अपने उसी मालिक के मेज से गिरने वाले टुकड़ों को खाते हैं ना, तो तू मुझे कुत्ता ही समझ ले। खुदा ने कहा कैसा ईमान तो मैंने इसराइल में भी नहीं देखा। आपका ईमान अगर इसराइल के ईमान से ज्यादा नहीं है तो क्या ईमान है? क्यों? क्योंकि मेरी और आपकी लाइफ में खुदा ने वो काम किया है जिसका तजर्बा बनी इसराइल ने अब तक नहीं किया। चंद लोगों ने उसकी जात का, उसके मुकाशफे का, उसकी उसकी निजात का तजर्बा किया, बट हमने जो तजर्बा किया है उसकी निजात का, वो उन्होंने नहीं किया। तो इसलिए खुदा मुझसे और आपसे वो कुछ कर रहा है, वो कुछ दिखा रहा है और वो मोहब्बत जाहिर कर रहा है जो शायद किसी ने नहीं दिखाई। तो सबसे पहली बात वो मुझे और आपको आजिज बनाना चाहता है। और याद रखिए, जहां आजिजी नहीं है, एब्सेंस ऑफ ह्यूमिलिटी, इसका क्या मतलब है? प्रेजेंस ऑफ प्राइड, है ना? अगर आपकी लाइफ में आजिजी नहीं है तो उसके बरक्स कौन सी चीज है? घमंड। अगर आपकी जिंदगी में रोशनी है नहीं है तो उसके मुखालिफ क्या है? तारीकी, obviously, right? अगर आपकी जिंदगी में गर्मी नहीं है तो फिर उसका अपोजिट क्या है? सर्दी है। तो यहां पर लिखा है कि खुदा चाहता है कि मैं और आप आजिजी इख्तियार करें। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में जो कुछ भी है, इट कम्स फ्रॉम अबव। आमीन। इट कम्स फ्रॉम अबव। ये ना जोर से ना कुवत से बल्कि उसके रूह से हो रहा है। आमीन। आप फिर अपना फखर तो छोड़ ही देना। दूसरी बात, खुदा पर एतकाद करना कभी ना छोड़ें। तीसरी बात, इंसान सिर्फ रोटी और पानी से नहीं जीता रहेगा, किससे? बल्कि हर उस बात से जो खुदा के यहां से, उसके मुंह से ये निकला हुआ इंस्पायर्ड वर्ड है खुदा का, उसके मुंह से निकला हुआ हर एक लफ्ज जो है ये मेरे और आपके लिए इल्हाम है। उसके मुंह से निकला हुआ हर एक लफ्ज मेरे लिए हुक्म है। आमीन। और जिससे हम प्यार करते हैं ना, हम उसे कहते हैं आपका तो हर कहा हुआ मेरे लिए हुक्म है, है ना? एज लॉन्ग एज वी आर इन लव विद हिम और हर, राइट? नीला असरी कहती हूं दीसी, है ना? ये यानी ये हर बात जो निकली होती है जिससे हम मोहब्बत करते हैं वो हुक्म की शक्ल इख्तियार कर जाती है अगर हम मोहब्बत करते हैं तो। फिर क्यों? क्योंकि हमें यही होता है कि I wanna do it, no matter what, कुछ भी हो जाए, I will do it, मैं इसे करूंगा। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। This is what Jesus said. अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे हुक्मों पर, तो इसका मतलब है तीसरी बात मुझे और आपको याद रखनी है कि इंसान रोटी और पानी से नहीं, आपकी जिंदगी में मौजूद लताफतें, आपकी जिंदगी में मौजूद ब्लेसिंग्स, यही आपके जीने का जो तरीक नहीं होना चाहिए बल्कि खुदा का पाकलाम होना चाहिए। और जिसकी लाइफ में खुदा का पाकलाम है, खुदा फिर उसे आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड करता चला जाता है, बढ़ाता चला जाता है। लोग देख रहे हैं, आपके साथी आपको देखेंगे, आपके रानुमा आपको देखेंगे, आपका एरिया आपको देखेगा, आपके लोग, फैमिली, खानदान आपको देखेगा कि खुदा किस तरह से आपको ब्लेस कर रहा है। आमीन। चौथी बात, यसु, यहां पर खुदा ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तू मेरा खौफ मान। इन सारी बातों में फिर भी तू मुझसे डरता रहे, बहुत चौधरी ना बनी, है ना? होता है ना बाद का, जब हमने बड़े बड़े काम देखे हो ना, कहना गल है ये कौन सा मामला है जी, इट्स नथिंग फॉर मी, है ना? इट्स नथिंग फॉर मी, आई एम अ बिलीवर, आई कैन डू एनीथिंग ऑन माय ओन, बट इट्स नॉट लाइक दैट। यू कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन योर ओन अंटिल इट्स गिवन फ्रॉम अबव, जब तक खुदा की तरफ से ना दी जाए। तो खुदा ये चाहता है कि बेटा ताबेदारी को नहीं छोड़ना, आप भी अपने बच्चे से यही तवक्को करते हैं कि बेटा ताबेदार हो, बेटा ताबे, और जिस जो ज्यादा ओबीडियंट है, जो ज्यादा ताबेदार है, उससे उतनी ज्यादा आपकी फेलोशिप होती है। आपको मालूम है नाफरमान बच्चे की तो गल भी ध्यान ना सुनने दिल नहीं करता, वो तो बात करे तो तकलीफ होती है। हाँ ऑब्वियसली बेटा बेटी है, हम उसे छोड़ नहीं सकते, बट ये अगर नाफरमान है तो तकलीफ का बात है। और खुदा चाहता है कि बनी इसराइल को वो सिखाए कि देख तेरे तन के कपड़े खराब नहीं होने दिए मैंने, क्या तू मुझ पर एतकाद नहीं कर सकता? तू जितना मर्जी कैल्विन क्लाइन पहन ले, तू डूची गूची जो मर्जी पाला है, पर जो मैंने तुझे पहनाना है ना वो कभी खराब नहीं होगा। आमीन। उसकी शान और शौकत, उसकी हशमत, उसकी खूबसूरती जो है वो उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इसलिए ट्रस्ट मी, मुझ पर एतकाद कर। आमीन। आइए उससे कहें खुदावंद ये चारों चीजें मैं करूं, क्योंकि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो खुदा की मर्जी से हो रहा है, और वो आपको सिखाना चाहता है कि आप हम्बल हो, ह्यूमिलिटी इख्तियार करें, आजजी इख्तियार करें। दूसरी बात, आप उस पर हमेशा भरोसा करते रहें। तीसरी बात, आप उसके कलाम को अपनी लाइफ में हमेशा अव्वल दर्जा दें। और चौथी बात, आप ताबेदारी करते रहें। और ताबेदार जो है वो जिंदगी में कभी कभी, याद रखिए, ताबेदार जिंदगी में कभी कमी और घाटों को नहीं देखता। नाफरमान तो बहुत सी नाकामियों का तजुर्बा कर लेता है, मगर ताबेदार नाकामियों में भी कामयाबी का मजा उठा रहा होता है। मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप? नाफरमान जो है वो हमेशा कमियों और घाटों का शिकार रहता है, बट ताबेदार जो है वो अपनी कमियों और घाटों, बीमारियों, मुफलसी, नंग सब में खुदा की जात और उसकी कुदरत का तजर्बा कर रहा था, उसकी परसिवरेंस का तजर्बा कर रहा था कि खुदा भला है। आमीन। और इसलिए आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है ऊपर से हो रहा है। आमीन। आइए सरों को झुकाएं, आइए सरों को झुकाएं और उससे कहें, खुदावंद मैं चाहती हूं कि मैं हमेशा तेरे कलाम की तरफ देखता देखती रहूं, मेरी निगाह तेरे पाक कलाम की तरफ रहे, मेरा ध्यान ज्ञान तेरे पाक कलाम की तरफ रहे, और मैं कभी किसी सूरत में खुदावंद अपनी जात पर तकिया ना करूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, और उन तमाम तर चीजों के पीछे तू है मेरे खुदावंद। मेरी नाकामियों, मेरी फेलियर्स के पीछे तू है खुदा। मैं जानता हूं कि तू मुझे बेअबानी सफर में से लेकर जा रहा है, तू मुझे बेअबानी सफर का जो है वो तजर्बा दे रहा है, ताकि मैं जानूं कि बेअबान में भी तू ही खुदा है। सदरक मिसक अबद नजू की आग की भट्टी में भी तू ही खुदा है, डैनियल की शेरों की मांद में भी तू ही खुदा है, और मिस्री मुल्क से निकलते हुए उस बहरे कुलजम में भी तू ही खुदा है। एंड यू आर इन कंट्रोल, यू आर सॉवरेन। हालेलुया। शारून भाई से मैं